अगली सुबह इशिका उठी। आज उसके पास कुछ खास काम नहीं था, ऊपर से उसने यूनिवर्सिटी जाना भी छोड़ रखा था। वो बार बार अभिमन्यु के सामने भी नहीं जा सकती थी, तो इशिका ने बाहर घूमने का डिसीजन लिया। ब्रेकफास्ट के बाद इशिका तैयार हुई। उसने नॉर्मल डेनिम पैंट्स के ऊपर पिंक ट्यूब टॉप पहना था और ऊपर व्हाइट शर्ट, जिसे उसने सामने से खुला कर रखा था। इशिका वसुधा के पास आई और उनसे बोली, दादी क्यों ना आज हम शॉपिंग करने के लिए चलें, मुझे आपके लिए ड्रेस खरीदनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे भी नए कपड़ों का बहुत शौक है, वसुधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इशिका ने वसुधा को तैयार किया। वसुधा के सामान में उसने महसूस किया कि वसुधा के सारे कपड़े एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन किए हुए किसी डिज़ाइनर के थे। इशिका ने उन दोनों के लिए कैप मंगवाई और फिर दोनों वहां से गोवा के सबसे बड़े मॉल में पहुंची। वहां डिज़ाइनर के बनाए हुए स्पेशल कपड़े मिलते थे। वहीं उनसे कुछ पहले आयशा भी मिस्टर आदर्श सिंघानिया के साथ उसी स्टोर पर आई थी। उसने आदर्श से मासूमियत से मुस्कुराकर कहा, डैड आप इतना बिजी रहते हो, फिर क्या ज़रूरत है आपको मेरे साथ यहाँ आने की, मैं खुद ही शॉपिंग कर लेती। हाँ बेटा मैं जानता हूँ तुम्हारी चॉइस काफ़ी अच्छी है, पर यहाँ कपड़े तुम्हारे लिए नहीं, नक्श की परदादी के लिए खरीदने हैं। आज शाम को हम उनके यहाँ डिनर के लिए जाने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें एक अच्छी सी ड्रेस प्रेजेंट करो। आदर्श ने मुस्कुराकर काफ़ी प्यार से जवाब दिया। आयशा ने उनकी बात पर हाँ में सर हिलाकर कहा, अच्छा ठीक है, मैं पहले उनसे नहीं मिली हूँ, कैसी हैं वो, कहीं कड़क मिजाज तो नहीं है ना, मुझे उन्हें इम्प्रेस करना होगा क्या? येस ऑफ कोर्स बेबी, तुम्हें उन्हें इम्प्रेस करना होगा, क्योंकि राजवंश एम्पायर की 20% शेयर्स उनके नाम है। वैसे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अल्जाइमर की मरीज़ हैं और उन्हें कुछ याद नहीं रहता। उनकी गुड बुक्स में आने के लिए मेहनत मत करना, लेकिन उनकी हेटर्स की लिस्ट में भी मत आ जाना, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हैं वो। मिस्टर सिंघानिया ने अब तक वसुधा के बारे में जो भी सुना था वो सब आयशा को बता दिया। आयशा ने मुस्कुराकर उनकी बात पर हामी भरी और फिर अपने मन में बोली, 20% शेयर्स उनके नाम है, तब तो इम्प्रेस करना ही पड़ेगा, आखिर फ्यूचर का सवाल है। आयशा अपनी तरफ से बेस्ट ड्रेस सिलेक्ट करने लगी हुई थी, तो वहीं इशिका भी वसुधा को अंदर लेकर गई। वो उनके लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी। इशिका ने उनके लिए एक ड्रेस सिलेक्ट की और वसुधा के लगाते हुए कहा, दादी आपको ये ड्रेस ट्राई करनी चाहिए, ये कलर आप पर बहुत सूट करेगा। अगर तुम कहती हो तो पहनकर देख लेती हूँ, वसुधा ने मुस्कुराकर कहा। इशिका और वसुधा आपस में बातें कर रहे थे, तभी कोई उन्हें अजीब नज़रों से देख रहा था, वो आयशा थी। उसने गौर से वसुधा की तरफ देखा और फिर अपने मन में कहा, ओह तो ये बूढ़ी औरत इसके सड़क छापताती की दादी है, मानना पड़ेगा कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ने लगी है ये लड़की, इतने बड़े मॉल में आने की इसकी हिम्मत भी कैसे हो गई। आयशा खुद शॉपिंग करने के बजाय उन्हें देख रही थी। इशिका ने वसुधा को पहनने के लिए ड्रेस दी थी, लेकिन कुछ देर उस ड्रेस को देखने के बाद वो बोली, नहीं मुझे ये अच्छी नहीं लग रही है, कुछ और ट्राई करते हैं। वसुधा की बात सुनकर आयशा सार्कास्टिकली मुस्कुराकर बोली, अच्छी नहीं लग रही है या खरीदने की औकात नहीं है, पता नहीं इन जैसे लोगों को अंदर घुसने भी कौन देता है। आयशा ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाई, वो अपने कदम इशिका की तरफ बढ़ते हुए तेज आवाज में बोली, इशिका तो ये तुम्हारे पति की दादी है। बोलते हुए आयशा ने वसुधा की तरफ देखकर तिरछा मुस्कुराकर कहा, नमस्ते दादी, मैं आपकी बहू की बहन हूँ। वैसे आपने जो ड्रेस अपने हाथ में पकड़ी है वो पूरे 2 लाख रुपए की है, जिसे खरीदना तो दूर की बात है, ट्राई करने तक की आपकी हैसियत नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि थोड़ी दूर जाने पर यहाँ ठेले पर कुछ लोग कपड़े बेच रहे होंगे, वहां से जाकर कुछ खरीद लीजिए, वहां से आपको पसंद भी आ जाएगा और वो आपकी स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको अच्छे भी लगेंगे। अपना मुंह बंद रखो, इशिका गुस्से में बोली। आयशा का इस तरह बीच में आकर इंटरप्ट करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा ठीक है चुप हो जाती हूँ, आयशा बोली। वैसे मैंने एड्रेस सही बताया ना इशिका, तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से कपड़े कहाँ मिलते हैं ये तुम्हें पता है ना, तुम अपनी दादी सास को वहीं लेकर क्यों नहीं चली जाती जहां से तुमने ये सस्ते सेल वाले कपड़े खरीदे हैं। देखने में किसी महंगे से ब्रांड के लग रहे हैं, पर मुझे अच्छे से पता है कि ये उसकी 4th-5th कॉपी भी नहीं होंगे। आयशा जिस लहजे में इशिका से बात कर रही थी ये वसुधा को अच्छा नहीं लगा। वो गुस्से में आयशा से बोली, कहना क्या चाहती हो लड़की तुम, हम क्या तुम्हें झोपड़ी में रहने वाले भिखारी दिखाई दे रहे हैं, कोई शक है क्या उसमें? आयशा ने तिरछा मुस्कुराकर कहा। वसुधा आगे और बहस करती उससे पहले इशिका ने उनका हाथ पकड़ लिया। गुस्से में वो अग्रेसिव हो सकती थी और अभिमन्यु के कहे मुताबिक गुस्सा उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था। इशिका वसुधा को वहां से ले जाती, उससे पहले आदर्श वहां आ गए। जब उन्होंने इस तरह उन तीनों को बहस करते सुना तो वो देखने के लिए आए। सामने इशिका एक बूढ़ी औरत के सामने खड़ी थी। आदर्श ने वसुधा की तरफ कुछ पल गौर से देखा और फिर धीरे से कहा, मिसेस वसुधा राजवंश। वो उस औरत को गौर से देखकर पहचानने की कोशिश कर रहे थे। आखिरी बार जब वो वसुधा से मिले थे तब वो सो रही थी। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे और वो बीमार थी, जबकि सामने मौजूद औरत बुजुर्ग जरूर थी, लेकिन वो बीमार नहीं लग रही थी और ना ही उनकी आंखों के नीचे कोई काले गड्ढे थे। लगता है मुझे ही गलतफहमी हो गई कि ये मिसेज राजवंश है, यहाँ इस छोटे से स्टोर में क्या करेगी वो भी इशिका के साथ, आदर्श ने मन ही मन कहा। तुरंत ही उनके हिसाब से उनकी कन्फ्यूजन दूर हो गई थी। आयशा ने चालाकी से मासूम बनते हुए कहा, देखिए ना डैड, ये बेवजह तमाशा कर रही है, ये बूढ़ी औरत इसकी दादी सास है। मैंने तो इसे इतना ही कहा कि ये यहाँ पर कपड़े ना खरीदे, वो इतने महंगे कपड़े की अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। हाँ तो क्या गलत कह रही हो तुम, आदर्श ने इशिका को देखकर कहा। तुम्हारी बहन तुम्हें बिल्कुल सही एडवाइस दे रही है, यहाँ बिल भरने के टाइम पर तुम्हारी बहुत इंसल्ट होगी, बेहतर होगा अभी यहाँ से चली जाओ। इशिका मिस्टर सिंघानिया से बात नहीं करती थी, इसलिए उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इशिका वहां से जाने के लिए पलटी, तभी वसुधा ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, बहू क्या ये तुम्हारे पापा हैं? पापा शब्द सुनकर इशिका की आंखें नम होने लगी, उसने कभी इस शब्द का मतलब ही नहीं समझा था। आदर्श सिंघानिया ने कभी उसे पिता का प्यार नहीं दिया। बचपन में जब मालविका उसे खाना नहीं देती थी और उसे मारती थीकती रहती थी, तब भी आदर्श ने कुछ नहीं कहा। वो यही कहते थे कि इशिका को मालविका की हर बात माननी चाहिए, चाहे वो गलत हो या सही। अगर सिंघानिया फैमिली में किसी के दिल में थोड़ी बहुत भी इशिका के लिए फीलिंग थी तो वो राधिका मर्चेंट थी। इशिका बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए बिना उसने कुछ बोले वसुधा की सिलेक्ट की हुई एक ड्रेस उठाई और पे करने के लिए काउंटर की तरफ जाने लगी। आदर्श नहीं चाहते थे कि पैसे नहीं होने की वजह से इशिका की इंसल्ट हो। वो उसे प्यार ना करते हो, लेकिन उसके नाम के पीछे आदर्श का नाम लगा हुआ था। आदर्श तुरंत इशिका के पीछे गए और बोले, ये काफी महंगी है, मैं इसकी पेमेंट कर देता हूँ, लेकिन आगे से तुम इस तरह की किसी जगह पर नहीं जाओगी। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगी मिस्टर सिंघानिया, इशिका ने काफी पोलाइटली जवाब दिया। आदर्श कुछ कहता उससे पहले आयशा जल्दी से आई और इशिका के हाथ की तरफ इशारा करके बोली, डैड वो ड्रेस परफेक्ट है, अभी अभी मेरी डिजाइनर से बात हुई तो उन्होंने बताया है कि ये अभी नया डिजाइन होकर आया है, इस पर हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई है, ये मिसेज वसुधा राजवंश के लिए परफेक्ट गिफ्ट होगा।
जैसे ही आयशा ने वसुधा राजवंश का नाम लिया, वसुधा जी के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। वो मन ही मन बोली, ये नाम मुझे इतना सुना हुआ क्यों लग रहा है? क्या मैं उस औरत को जानती हूँ जिसके लिए ये कपड़े लेकर जाना चाहती हैं? अल्जाइमर होने की वजह से वसुधा अपना नाम तक याद नहीं रख पाती थी, वो खोई हुई थी। आयशा ने अपनी तरफ से ड्रेस सिलेक्ट कर ली थी तो आदर्श ने इशिका से कहा, इशिका तुम कोई और ड्रेस सिलेक्ट कर लो, ये आयशा को दे दो, आज उसके लिए काफ़ी खास दिन है, वो अपने ससुराल जा रही है और नक्श की परदादी के लिए इससे परफेक्ट गिफ्ट नहीं हो सकता। मुझे ये पसंद है और मैं ले रही हूँ, इतना बड़ा स्टोर है, आप कोई भी ड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए, इशिका ने पूरी सख्ती से कहा। अब वक्त बदल गया था, वो आयशा की मनमानियों को नहीं सहने वाली थी। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? एक ड्रेस ही तो मांगा है, इतनी सी बात पर तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? तमाशा लगाने की आदत क्यों हो गई है तुम्हें? आयशा गुस्से में बोली। इशिका और आयशा के बीच कोई बहस ना हो जाए इसलिए आदर्श ने काफ़ी शांति से कहा, अच्छा ठीक है इशिका, तुम ये ड्रेस आयशा को दे दो, मैं इसकी 5 गुना कीमत तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, पैसे तुम्हारे काम आएंगे, तुम और तुम्हारा पति एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हो। मुझे किसी के भी एहसान की ज़रूरत नहीं है, आप कोई दूसरी ड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए, ये तो दादी ही पहनेंगी, इशिका ने जवाब दिया और पेमेंट करने के लिए अपना कार्ड निकालने लगी। तभी वसुधा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये ड्रेस इसे दे दो, मुझे ये अच्छी नहीं लगी है। लेकिन आपने जो ड्रेस सेलेक्ट की थी उसमें यही सबसे अच्छी ड्रेस थी, हमें फिर से नई ड्रेस देखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इशिका लाचारी से बोली, वो ज़्यादा टाइम इन सब में वेस्ट नहीं करना चाहती थी। ठीक है तो फिर हम शॉपिंग नहीं करते हैं, मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए, वसुधा जी ने कहा और इशिका के हाथ से ड्रेस छीनकर आयशा के हाथ में पकड़ा दी। इशिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर उसने कुछ नहीं कहा और ड्रेस वहीं कर छोड़ दी। वो वसुधा को लेकर वहां से निकाल दी, वो पूरे रास्ते में बिल्कुल चुप थी। कुछ ही देर में इशिका वसुधा को लेकर पास ही के कैफे में पहुंच चुकी थी, वो उनके लिए कॉफ़ी लेने गई थी, तभी वसुधा के मोबाइल पर एक कॉल आया। सामने से एक आवाज़ आई, मॉम आप कहाँ पर हैं? जहाँ भी हैं घर आ जाइएगा, क्योंकि आज सिंघानिया फैमिली हमारे घर खास आपसे मिलने के लिए आने वाली है। सामने से प्रशांत राजवंश बोल रहा था, जो नक्ष का दादा और अभिमन्यु के डैड थे। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, वसुधा ने इतना ही कहा और फिर कॉल कट कर दिया। उन्होंने दिमाग पर थोड़ा जोर दिया और उनके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, इसका मतलब वो लड़की मुझसे मिलने के लिए आने वाली थी और मैं ही वसुधा राजवंश हूँ। क्या वो ड्रेस उसने मेरे लिए सिलेक्ट की थी? वसुधा को सब याद आ गया था। उन्होंने तुरंत अभिमन्यु को वॉइस मैसेज लिखते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले किसी ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था और मेरी बहू के साथ भी। मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम घर आ जाओ, तुम मेरे लिए स्टैंड लो, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो मुझसे प्यार करते हो और मेरे लिए खड़े हो सकते हो। मैं आता हूँ दादी, अभिमन्यु ने जवाब दिया और तुरंत अपने काम छोड़कर घर जाने लगा। वहीं इशिका कॉफी लेकर वसुधा के पास पहुंच चुकी थी। उसने देखा वसुधा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इशिका सवालिया नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। तभी वसुधा ने कहा, बहू मुझे मेरे पोते का नाम याद आ गया है और ये भी कि मैं कौन हूँ। डोडो डोडो डोडोट, मिसेज लाजवंश जितना सीधा दिखती है उतनी है नहीं, बाकी आपको पता चल जाएगा। कहानी के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। पाठ पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पाठ पर मिलते हैं।